श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तम् मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति इस प्रकार गुह्यतमं सर्वाधिक गुप्त शास्त्रम शास्त्र इदम यह उक्तम प्रकट किया गया मया मेरे द्वारा अनघ हे पाप रहित एतत यह बुद्धवा समझकर बुद्धिमान बुद्धिमान स्यात् हो जाता है कृतकृत्यः अपने प्रयत्नों में परमपूर्ण च तथा भारत हे भरत पुत्र हे अनघ यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। तो इस संबंध में श्रील बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, पहली चीज ये कि ये गुह्यतमम शास्त्र है, अर्थात यह अयोग्य व्यक्तियों को नहीं दिए जाना चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों को ये बात प्रकट नहीं होती। आप कहेंगे क्या अयोग्यता है, लोग भगवान के भक्त नहीं हैं। इस प्रकार से भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि वो भगवान है, पुरुषोत्तम है। फिर भी ऐसे कितने लोग मौजूद हैं भारत में ही जो लोग कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि गीता हाथ में होते हुए भी, श्लोक सामने होते हुए भी लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं। तो ये बात मन में रखते हुए भगवान ऐसा कहते हैं कि जो लोग अयोग्य हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे एक शब्द है इति, यानी कि भगवान कह रहे हैं कि संक्षेप में मैंने आपको बताया क्योंकि आप मेरे अनघ यानी कि पाप रहित यानी मेरे सबसे अच्छे भक्त हो अर्जुन, इसलिए मैं इस ज्ञान को तुम्हें दे रहा हूं। ध्यान देना चाहिए शास्त्र मतलब ये तीन श्लोक अर्थात 16, 17, 18 में भगवान ने जीवों की स्थिति को बताया है और अपनी स्थिति को बताया है उनके संबंध में और किस प्रकार से भगवान जीवों से श्रेष्ठ है ये बताया है। तो ये तीन श्लोक जो हैं इनको बता रहे हैं भगवान ये शास्त्र के रूप में, ये शास्त्र है तीन श्लोक। तो ये तीन श्लोक जिसमें भगवान का वर्णन है, भगवान की परिभाषा दी गई है भगवान कौन है, यानी कि श्लोक क्रमांक 17, श्लोक क्रमांक 18 और श्लोक क्रमांक 19। तो ये जो है इसको भगवान शास्त्र कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे पाप रहित अर्जुन, तुम्हें ऐसे व्यक्ति को नहीं ये ज्ञान देना चाहिए जो तुम्हारी तरह शुद्ध ना हो, जो तुम्हारी तरह पाप रहित ना हो, ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए क्योंकि देने के बाद वह और गुस्सा होगा और अथवा उसको समझ में नहीं आएगा। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है, इस शास्त्र को समझ लेता है कि कृष्ण भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है, तो ऐसा ही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। और वह यहां पर शब्द आया है बुद्ध्वा बुद्धिमान, तो अपने उस प्रकार से समझ लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेता है तो वह कृत्य कृत्य हो जाता है, अर्थात उसे भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होगा, साक्षात भगवान से मिलने का और उनके धाम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। कितने बड़ी बात है अगर इस प्रकार से भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करे और अपने नित्य दासत्व को स्वीकार करे भगवान के प्रति, तो बस यही योग्यता है भगवत धाम जाने की। तो भगवान ने इस ज्ञान को जो भगवान के संबंध में है, यानी भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करने वाले ज्ञान की भगवान स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस 15वें अध्याय में हम सीख रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन है, अर्थात भगवान कौन है जो बद्धात्माओं और जीवात् और मुक्त आत्माओं से श्रेष्ठ है, और वह व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में जाएंगे हम। भगवान ने यहां स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो उस प्रकार की विवेचना करेगा कि शिव बाबा ने गीता बोली है, जबकि स्पष्ट रूप से कृष्ण बोल रहे हैं। ये वो कहे नहीं कृष्ण ने तो बोली है, लेकिन इनके अंदर से शिव बाबा बोल रहे हैं। शिव बाबा हो या कोई भी बाबा हो, कृष्ण के अंदर बाहर कुछ नहीं है, कृष्ण कृष्ण है। तो इस प्रकार की विवेचना करने वाले व्यक्ति नितांत रूप से धोखेबाज हैं, जो भगवद गीता को सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। बात कठोर सी लग रही होगी, लेकिन बोलना पड़ता है, एक ऑपरेशन करना पड़ता है, अन्यथा लोग समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं सभी लोग ठीक बोल रहे हैं, सब लोग ठीक नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अनघ, जो पाप रहित हैं वही समझ पाते हैं इस बात को, वही स्वीकार कर पाएंगे। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से उन प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवद गीता को ज्ञान कह करके टाल नहीं देना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवद गीता को सुन करके जो व्यक्ति सही धारणा से युक्त होगा तो उसके भक्ति के प्रयास भी सफल होंगे। इसलिए आवश्यक है कि भक्ति के की सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम तत्व को ठीक प्रकार से समझें। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह सकता। जैसे सूर्य जहां रहेगा वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। आप लोग भी स्पष्ट समझते हैं, जो लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं और भगवद गीता को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं यथारूप में, तो उनका अज्ञान स्पष्ट रूप से चला जाता है। कोई उनको मूर्ख नहीं बना सकता इस संबंध में कि ये मेरे गुरु भगवान है, वो फलाना अवतार भगवान का है। वो बिल्कुल उसको समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो अगर व्यक्ति परंपरा में ज्ञान प्राप्त करता है तो ये समझ जाता है कि कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है, और ऐसी गलती नहीं करता है कि समान व्यक्ति को तो भगवान मान ले और भगवान को सामान्य व्यक्ति मान ले। बहुत बड़ी गलती हो जाती। तो भगवान को भगवान समझना और समान व्यक्ति को समान व्यक्ति समझना, ये शक्ति तभी आ पाती है जब व्यक्ति भगवद गीता यथारूप को यथारूप तरह से स्वीकार करे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। बहुत सुंदर है, भक्ति की शुद्ध करने की जो शक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। और हमें भक्ति शुद्ध होने के उद्देश्य से भी करनी चाहिए, ताकि हम शुद्ध भक्त बन सकें, भगवान के शुद्ध सेवक बन सकें। भौतिक इच्छाओं की लालसा लेकर के भक्ति भी की जा सकती है और उससे अंततः तो भगवान की भक्ति भक्त शुद्ध हो भी जाता है। लेकिन भौतिक कलमश से ग्रस्त होते हुए भी व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए ताकि उसका हृदय एक दिन शुद्ध हो जाए। जैसे हम बीमार होते हैं तो बीमारी बनाए रखने के लिए दवा नहीं लेते हैं, अभी तो दवा लेते हैं ताकि एक दिन हम स्वस्थ हो जाएं। तो ये उद्देश्य रहना चाहिए। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। बहुत स्पष्ट है, व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, ये जानता हो वो जानता हो, लेकिन अगर वो ये नहीं जानता कि वो कौन है तो पागल है। है ना, कितने आश्चर्य की बात। जैसे एक पागल जानता नहीं है कि वो कौन है, उसे क्या करना चाहिए। तो जब तक कोई व्यक्ति ये ना जाने कि वो कौन है तो ये कैसे जानेगा उसे करना क्या है। तो कितनी भी बुद्धिमानी दिखाए, अंततोगत्वा वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। और उसको निकलने का एकमात्र तरीका है, एक ही तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि कृष्ण की शरण ली जाए। भजहु हरि पद नीति रे। इसलिए वही पूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है, जो कृष्ण की सेवा कर रहा है। जिस अनक शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनक अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। बहुत सुंदर बात है, ये शाम तो अंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम त्रिद्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम अदृढ़व्रता। जिनके जीवन में पुण्य रहा है और जो पापों से मुक्त हैं वही भगवान श्री कृष्ण का भजन दृढ़ता से कर पाते हैं। अर्थात भगवान की भक्ति में श्रद्धा होती है, भगवान के चरणों में श्रद्धा होती है अगर हम लोग पाप रहित जीवन जीते हैं और भगवान की भक्ति में लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें शुद्ध होने के लिए कुछ अलग आवश्यकता है, भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति स्वयं ही पापों के प्रति पापों की प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है और पुण्य में उसकी रुचि होने लगती है। और भगवान की कथाएं स्वयं ही व्यक्ति को शुद्ध कर देती है, उसे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे वह शुद्ध जीवन जीता है, भगवान का भजन करता है, अधिक अधिक भगवान को समझ पाता है और उससे भगवान की सेवा करने की जो प्रेरणा है वह भी और अधिक अधिक उसके हृदय में बढ़ जाती है। उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो ये तो हमने अभी को बताया था इस बारे में। तो इसीलिए भक्तों की संगति करनी चाहिए ताकि हम निष्पाप जीवन जीने के लिए प्रेरित हो सकें। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। पूर्ण कृष्ण भावनामृत मतलब मन से वचन से कर्मों से कृष्ण की सेवा करते रहना, निरंतर अभ्यास से अभ्यास में लगे रहना। और शुद्ध भक्त मतलब जो इस प्रकार की अभ्यास में लगे हुए, उनकी संगत करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है, अर्थात इस जगत में जगत को भोगने की इच्छा, ये हृदय का दौर्बल्य है। हम जानते हैं कि हमें भोग नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी व्यक्ति भोगों में लग जाता है, तो ये हृदय की दुर्बलता है। तो धीरे धीरे भक्तों के संघ के द्वारा और भगवान की भक्ति के द्वारा ये दुर्बलता चली जाती है। जैसे कोई हमारा लीवर अगर डाउन होता है, लीवर दुर्बल होता है, तो दवा लेने से लीवर ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से भोग की वासना भगवान की भक्ति करने से क्रमशः दूर चली जाती है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। अर्थात जब हम जीव किसी वस्तु के प्रति आसक्त होंगे क्योंकि हम उसे भोगना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति हमें वो भोग देगा या वो वस्तु देगा, तो उस व्यक्ति के द्वारा हम लोग नियंत्रित हो जाते हैं। इसीलिए एक ब्राह्मण किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकता, केवल शास्त्र के द्वारा होता है, क्योंकि उसकी रुचि भोगों में नहीं होती। ये बहुत ही गंभीर बात है कि जितना हम भोग आसक्त होंगे उतना ही दूसरों के पास शक्ति होगी हमें नियंत्रित करने की। जैसे मान लीजिए मुझे मान की बहुत इच्छा है, अगर सम्मान की इच्छा है, तो जहां मुझे सम्मान मिलेगा मैं नियंत्रित हो जाऊंगा उन लोगों के द्वारा, और जहां असम्मान मिलेगा फिर मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। तो जब तक ये मान की इच्छा सम्मान की इच्छा रहेगी तो व्यक्ति लोगों के द्वारा नियंत्रित रहेगा। तो इस जगत में हम जितनी अपेक्षा लोगों से करेंगे उतना ही लोग हमको नियंत्रित कर सकेंगे। तो इसलिए भौतिक प्रकृति के नियंत्रण से व्यक्ति को बचना है तो उसे इन भोग की वासनाओं को त्यागना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्रपात बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति पे जितना अधिक हम लोग भोग करने की इच्छा रखेंगे उतना ही व्यक्ति उन वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाएगा। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। व्यक्ति धर्म के पथ को त्याग देता है इसी हृदय की दुर्बलता के कारण। उसे पता है कि गलत क्या है और सही क्या है, फिर भी वह सही चीज का चुनाव नहीं कर पाता है इसी दुर्बलता के कारण। दुर्बलता कैसे जाएगी? भक्ति करने से, भक्तों के संग में आने से। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6 श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो किस प्रकार से हम लोग जगत की आसक्ति को त्याग सकते हैं उसका वर्णन हुआ है, और उसके बाद वर्णन हुआ है कि किस प्रकार से व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, भगवान को भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जान करके महाबुद्धिमान बन करके उनकी भक्ति करके उनके धाम की प्राप्ति कर सकता है। हरे कृष्णा।